हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अगले दिन सुबह ही निहारिका ने अपनी फैमिली से अपने और मृणाल के बारे में बात कर ली थी। पहले वो थोड़ा हिचकिचाई, जिसकी दो वजहें थी। पहला, मृणाल के परिवार में कोई नहीं था, और दूसरा, उसका एक बेटा था। पर निहारिका ने उन्हें मना लिया और अंत में धृति अर्णव, कबीर माधुरी के साथ ही उनकी शादी करने का फैसला किया गया, जिसकी सबसे बड़ी वजह थी कुश। पहले तो मृणाल को धृति और माधुरी का साथ मिल गया था, पर अब जब दोनों अपनी अपनी लाइफ में बिजी होने वाली थी, तो कुश को अकेले संभालना उसके लिए चैलेंजिंग होगा, और उससे भी ज्यादा मुश्किल होगा उसे धृति से दूर लेकर जाना। बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए निहारिका ने ही अभी शादी का फैसला सुनाया था, जिसे बाकी सबको मानना ही पड़ा। और मृणाल, उसे तो उसने कुछ कहने ही नहीं दिया। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि अर्णव, धृति और माधुरी, कबीर तो इस न्यूज़ को हजम ही नहीं कर पा रहे थे। पर ठीक ही था, तो किसी ने विरोध नहीं किया, उल्टा वो उन दोनों के लिए खुश थे। खैर, आनन फानन में खास करीबी रिश्तेदारों को फोन करके शादी के लिए इन्वाइट किया गया। दोनों के लिए आज हल्दी और बाकी रस्मों के लिए कपड़े मंगवाए गए। मृणाल की फैमिली में तो कोई नहीं था, और उनके जाने के बाद किसी रिलेटिव से उसका कुछ खास कॉन्टैक्ट रहा नहीं। फिर भी उसने करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों को शादी में इन्वाइट कर लिया था। हल्दी की तैयारियां हो चुकी थीं। मेहमानों से भरे घर में बाकी बच्चों के साथ अक्षु और कुश ने हुड़दंग मचाया हुआ था। बाहर गार्डन में पंडाल लगा था, और तीनों जोड़ों के लिए अलग अलग दीवान लगाए गए थे। पीले रंग से सराबोर गार्डन आज बड़ा लुभावना लग रहा था, और समा भी सुहाना था। कुछ देर बाद तीन जोड़ों को वहां लाया गया और उन्हें पैर में ही बिठाया गया। ढोलक बजाए जाने लगे। हल्दी के बन्ना बन्नी के गीत शुरू हुए। ढोलक की थाप पर महिलाएं और लड़कियां खूब जमके ठुमके शुमके लगा रही थीं। निहारिका और माधुरी का बस नहीं चल रहा था, वरना दोनों उछलते हुए वहां पहुंच जातीं। हल्की की रस्म अभी शुरू नहीं हुई थी तो अंजलि दी भी डांस कर रही थीं, और नन्हे अक्षु और कुश उनके आगे पीछे मटकते फिर रहे थे, जिन्हें देखकर बाकी सब मुस्कुरा रहे थे। धृति के साथ बैठा अर्णव भी उनके डांस को देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी परेशान से राजेश जी उसके पास चले आए। अर्णव, किसे बुलाया है तुमने, जिनके लिए तुमने रस्म शुरू करने तक से मना कर दिया? कहाँ है वो, कब तक आएंगी और कितना वक्त लगेगा उन्हें? मॉम नाराज हो रही है कि शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। बस 5 मिनट रुक जाइए जीजू, वो बस पहुंचने ही वाली हैं। अर्णव ने सौम्यता से शांत स्वर में जवाब दिया और अपने पॉकेट से फोन निकालते हुए वहां से हटकर साइड में चला गया। धृति की निगाहों ने दूर तक उसका पीछा किया, फिर सवालिया निगाहें राजेश जी की ओर घुमाते हुए पूछ बैठी, जीजू किसकी बात कर रहे हैं? सब तो यही हैं, अब कौन आने वाला है जिसके लिए रस्म शुरू नहीं की जा रही? हमें खुद नहीं पता, अर्णव ने बुलाया है किसी को और कहा है कि उनके आने से पहले रस्म शुरू नहीं होगी, हम खुद उनके आने का इंतजार कर रहे हैं, राजेश जी ने परेशानी भरे स्वर में जवाब दिया। इतने में अर्णव वहां लौट आया और मुस्कुराते हुए बोला, जीजू वो बाहर एंट्रेंस पर पहुंचने ही वाली हैं, आप जाकर उन्हें रिसीव कर लीजिए, बहुत स्पेशल पर्सनल हैं वो, तो उन्हें सीधे यहां हमारे पास लेकर आइएगा। राजेश जी, जो जाने कब से उस आगंतुक का इंतजार कर रहे थे, जल्दी से बाहर की ओर बढ़ गए। उनके जाने के बाद धृति ने अर्णव की ओर नजरें घुमाते हुए सवाल किया, कोई आने वाला है क्या? एक स्पेशल गेस्ट का इंतजार हो रहा है। अर्णव ने सहजता से मुस्कुराते हुए हामी भर दी। उसकी खुशी कुछ अलग सी लगी धृति को, और मन में कई सवाल उमड़ने लगे। कौन है वो जो आपके लिए इतनी स्पेशल है, जिनके इंतजार में आपने हल्दी की रस्म को रोका हुआ है और इतने एक्साइटेड नजर आ रहे हैं? आएंगी तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा, तब तक सब्र करो। अर्णव एक बार फिर मुस्कुराया। वहीं उसका ये जवाब सुनकर धृति खींच उठी, अर्णव जी आजकल ना आप मुझसे बहुत बातें छुपाने लगे हैं, सीक्रेट रखने लगे हैं, मैं कुछ भी पूछती हूं तो बस सब्र का दामन थमाकर जान छुड़ा लेते हैं। धृति ने नाराजगी से अपने गालों को फुलाया और शिकायती निगाहों से उसे घूरती हुई अपनी नाक से गोड़ने लगी। उसका नाराजगी दिखाने का ये अतरंगी पलीका देखकर अर्णव के लबों पर ठहरी मुस्कान गहरा गई। जब तुम यूं रूठते हुए अपनी नाक से गोड़ती हो, गालों को फुला लेती हो, तो कसम में कयामत लगती हो। अर्णव ने कशिश भरी निगाहों से अपनी दिलनशी को निहारते हुए आंखों से उसे छेड़ा, पर इस बार उसकी मोहब्बत का चाम धृति पर न चल सका और वो इससे बेअसर बनी रही। उल्टा उसने मुंह और बना लिया, रहने दीजिए आप, आज मैं आपके इस झांसे में नहीं आने वाली, और बात मत कीजिए आप मुझसे, नाराज हूं मैं अब आपसे। नाराजगी से उसे घूरते हुए धृति उससे थोड़ा दूर खिसक कर बैठ गई और अपना चेहरा भी माधुरी की ओर घुमा लिया। उसने अर्णव को पूरी तरह से नजरअंदाज कर लिया और अर्णव अपनी रूठी महबूबा को देखकर बस मुस्कुरा रह गया। कुछ मिनट बाद राजेश जी ने किसी औरत के साथ वहां कदम रखा। क्रीम कलर की सिल्की साड़ी पहनी थी उन्होंने, एकदम सिंपल थी। उनकी उम्र का अंदाजा आगे के सफेद हो चुके बालों से लगाया जा सकता था। अर्णव की नजर जैसे ही उन पर पड़ी, वो उनका स्वागत करने खुद उठकर उनकी ओर बढ़ गया। धृति को जब उसके उठने का आभास हुआ तो चोर निगाहों से उसने अपने बगल से उठकर जाते अर्णव को देखा। मन में जिज्ञासा जागी कि आखिर ऐसा कौन खास आया है जिसके लिए वो खुद उठकर गया है। अगले ही पल सालों पहले की यादें उसके जहन में ताजा हो गई, जब निहारिका के आने पर वो ऐसे ही सब छोड़ छाड़ कर उसे लेने पहुंच गया था। अब उनकी कौन सी स्पेशल दोस्त आ गई कि ये खुद उठकर उसके वेलकम के लिए चल दिए। धृति के माथे पर सिलवटें उभर आईं, भौंएं सोचने के अंदाज में सिकुड़ गईं। दिल में धुकधकी सी मची थी कि जाने अब कौन सी नई मुसीबत उनकी जिंदगी में आने वाली है। धृति की तीखी निगाहों से अर्णव का पीछा किया और निगाहें उस औरत के चेहरे पर जाकर ठहरी जिनके सामने खड़े अर्णव ने पहले उनके पैर छुए, फिर मुस्कुराकर उनसे बातें करने लगा। उन्हें देखकर धृति के चेहरे का रंग ही उड़ गया और आंखें बेयकीनी से फैल गईं। ये कोमल जी थीं, उसकी माँ, जिन्हें वो आज 3 सालों से भी ज्यादा वक्त के बाद देख रही थीं, और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी उसे वो बातें याद आई जो अर्णव ने उनके बारे में उसे बताई थीं। इसके साथ ही उसके चेहरे के भाव बदल गए और उसने उन पर से निगाहें फेर लीं। अर्णव ने कोमल जी को सबसे मिलवाया। उनसे मिलकर सभी बहुत खुश नजर आ रहे थे, पर धृति के चेहरे पर अजीब सी उदासी का पहरा था। कबीर भी उन्हें पहचान गया था, पर माधुरी उन्हें नहीं जानती थी। कबीर, ये लेडी कौन है जिनसे अर्णव सबको मिलवा रहा है? भाभी की मम्मी है वो, कबीर ने जैसे ही ये कहा, माधुरी की आंखें हैरत से फैल गईं, जैसे अभी बाहर ही आ गिरेंगी। ये धृति की मम्मी है? उसने दोबारा सवाल किया, शायद इस हकीकत पर विश्वास नहीं हो रहा था उसे। कबीर ने एक बार फिर हामी भर दी। ये भाभी की मम्मी है जिनसे अर्णव इन 3 सालों में मिलता रहा है, और शायद उसी ने उन्हें आज यहाँ बुलाया है ताकि भाभी की शादी की रस्मों में उनकी मम्मी भी शामिल हो सके। पर धृति तो इनसे बहुत नाराज है, वो तो इनके बारे में बात तक करना पसंद नहीं करती, और जो इन्होंने एक माँ होते हुए उसके साथ किया है ना, उसके बाद अगर धृति की जगह मैं होती तो मैं भी इन्हें कभी माफ नहीं करती, और अर्णव ये बात बहुत अच्छे से जानता होगा। फिर उसने आज के दिन धृति की मम्मी को यहाँ बुलाकर उसके इतने अच्छे दिन के खराब क्यों कर दिया? माधुरी परेशान थी धृति के लिए, अर्णव के उठाए इस कदम से खुश नहीं थी वो। कोमल जी के प्रति उसके मन में इतनी नाराजगी भरी थी कि उसे उनका यहाँ आना रत्ती भर रास नहीं आया था, और अब तो उसे अर्णव पर भी गुस्सा आने लगा था कि उसने उन्हें यहाँ बुलाया ही क्यों।
उसके सवाल सुनकर कबीर ने नासमझी से कंधे उचका दिया। इस बारे में मुझे भी कुछ नहीं पता, उसने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया था कि वो इन्हें भी शादी में बुलवाने वाला है, पर मुझे लगता है कि वो जो भी कर रहा है भाभी के लिए ही कर रहा है। कबीर ने यहाँ अर्णव की तरफदारी में चंद शब्द कहे ही थे कि माधुरी गुस्से भरी निगाहों से उसे घूरने लगी, और इसके बाद कबीर ने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। माधुरी ने उसे घूरते हुए बुरा सा मुंह बनाया, जैसे कह रही हो कि दोनों दोस्त एक ही जैसे हैं। फिर उस पर से नजरें फेरते हुए धृति का रुख किया। धृति, तुम ठीक हो? माधुरी की चिंता भरी आवाज़ धृति के कानों से टकराई, और अपनी उदासी छुपाते हुए उसने फीकी सी मुस्कान अपने लबों पर सजा ली। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उसने कहा कुछ नहीं, पर उसकी आंखों की नमी और चेहरे की उदासी सब बयां कर गई थी। दोनों अभी बात कर ही रहे थे कि कोमल जी के साथ अर्णव वहां पहुंच गया। माधुरी गुस्से भरी निगाहों से उसे घूरने लगी, जबकि धृति ने अपनी निगाहों को झुका लिया। कैसी हो बेटी? एक भावनाओं से सराबोर कमजोर सी आवाज धृति के कानों से टकराई, और सीने में तेज दर्द उठा। आंखों में गर्म लावे पिघलने लगे, पर उसने अपने आंसुओं को बाहर आने की इजाज़त नहीं दी, और फीकी मुस्कान लबों पर बिखेरते हुए सुनी निगाहों से उन्हें देखने लगी। अब तक बहुत अच्छी थी, पर अब शायद ये ना कह सकूं। चंद शब्दों में वो अपनी नाराज़गी जाहिर कर गई थी, और शिकायती निगाहें पल भर अर्णव पर भी ठहरी थीं। फिर उसने निगाहें फेर लीं। उसका ये व्यवहार कोमल जी के मन को आहत कर गया, और उनकी आँखें भीग गईं। लगता है आज तक भी आप अपनी माँ को माफ़ नहीं कर सकी हैं। कोई बात नहीं, हमने काम ही ऐसा किया है जिसकी कोई माफ़ी नहीं, और हम यहाँ आपसे आपकी खुशियाँ छीनने नहीं आए। दामाद जी ने बहुत कहा तो आपको आपके आने वाली ज़िंदगी के लिए आशीर्वाद देने चले आए। धृति ने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया, पर उसकी आंखों से एक बूंद आंसू फिसल कर उसके गाल पर लुढ़क गया, जिसे अगले ही पल उसने बड़ी ही बेरहमी से अपनी हथेली से पोंछ लिया। अब आ ही गई हैं तो अपनी बेटी की शादी अटेंड करके ही जाइएगा। सबको जो भ्रम हुआ है हमारे रिश्ते को लेकर, उसे बनाए रखिएगा। उम्मीद करती हूँ इतना तो कर ही देंगी आप मेरे लिए। बस इतना ही कहा था उसने, चेहरा अब भी सपाट था और लहजा दर्द से भरा। इतने में शालिनी जी रस्म शुरू करने वहाँ चली आईं। बारी बारी सभी लेडीज़ों ने तीनों जोड़ों को हल्दी लगाई। कोमल जी ने जब धृति को हल्दी लगाने के बाद उसके सर पर हाथ रखते हुए उसे आशीर्वाद दिया तो वो भावुक होने लगी, पर उसने खुद को कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। मृणाल और निहारिका दोनों ही इन सब बातों से अनजान थे, पर जैसा टेंशन का माहौल वहां बन गया था, इतना समझ गए थे कि कुछ तो गड़बड़ है। नन्हे कुश और अक्षु ने जब सबको उन लोगों को हल्दी लगाते देखा, ये उन्हें ये गेम बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। उनका बाल सुलभ मन कहाँ जानता था कि यहाँ हो क्या रहा था, उनके लिए तो सब कुछ खेल था। दोनों ने शैतानी मुस्कान लबों पर बिखेरते हुए चंचल निगाहों से एक दूसरे को देखा, फिर अपने नन्हे नन्हे कदमों से ठुमकते हुए उनकी ओर बढ़ गए। मम्मा, मामू, हम भी लदाई रे। जहां अक्षु अपने मामू के पास पहुंचा था, वहीं कुश अपनी मम्मा यानी त्रिति के पास पहुंच गया था और अब मासूम सी सूरत बनाई टुकुर टुकुर उन दोनों को देख रहे थे। कुश की मासूम सी सूरत पर नजर पड़ते ही त्रिति अपना सारा दुख, दर्द और चिंता फिक्र भूल गई। हल्की मुस्कान उसके लबों पर ठहरी। उसने टेबल पर रखा हल्दी का बाउल अपनी हथेलियों में थामते हुए उनके सामने कर दिया और खुद नीचे झुक गई। कुश और अक्षु दोनों ने मिलकर अर्णव और त्रिति दोनों के गालों पर अपनी नन्ही नन्ही हथेलियों से हल्दी लगाई और खुशी से खिलखिला उठे। धृति ने प्यार से बारी बारी दोनों के सर को चूम लिया। उसके बाद कुश नन्हे नन्हे कदमों से मृणाल की ओर बढ़ गया तो अक्षु भी उसके पीछे लग गया। दोनों ने मृणाल को हल्दी लगाई तो निहारिका ने भी अपना चेहरा उनके सामने कर दिया। मुझे नहीं लगाओगे? दोनों ने निगाहें घुमाकर एक दूसरे को देखा, फिर मुस्कुराते हुए झट से उसके गाल को भी अपनी हथेली से छू दिया। ए अक्षु के बच्चे, अपने ये मामा याद नहीं तुम्हें? कबीर ने अक्षु को पुकारा और दोनों चहकते हुए उनके पास पहुंच गए। उन्हें ये गेम बड़ा पसंद आ रहा था। मृणाल, अब मैं भी तुम्हें हल्दी लगा दूं? मृणाल अब भी लबों पर मुस्कान सजाए दोनों बच्चों को देख रहा था, जो अब एक दूसरे को मजे से हल्दी लगा रहे थे। निहारिका की आवाज उसके कानों से टकराई तो ध्यान उसकी ओर गया। निहारिका लबों पर सौम्य सी मुस्कान सजाए बड़ी ही उम्मीद से उसे देख रही थी। इजाजत की जरूरत है अब तुम्हें? मृणाल का ये सवाल सुनकर निहारिका ने दिलकशी से मुस्कुराते हुए इनकार में सर हिलाया और हल्दी से सनी उसकी हथेलियां मृणाल के गालों पर आ ठहरी। मृणाल ने भी उसे हल्दी लगाई। कबीर और माधुरी भी एक दूसरे को हल्दी लगाने में व्यस्त नजर आए। अर्णव ने अपनी गाहें त्रिति की ओर घुमाई, जो मुस्कुराते हुए दोनों बच्चों को देख रही थी। तुम हल्दी नहीं लगाओगी मुझे? धृति के कानों में अर्णव की आवाज पड़ी। इसके साथ ही उसके चेहरे के भाव बदल गए, मुस्कुराते लब सिमट गए और उन बड़ी बड़ी कत्थई आंखों में नाराजगी झलकने लगी। धृति ने तिरछी निगाहों से उसे घूरा और मुंह फेरने ही वाली थी कि अर्णव ने उसकी हथेली थाम ली। धृति, क्यों बुलाया आपने इन्हें यहाँ? अर्णव की बात काटते हुए धृति के कठोर लहजे में उससे सवाल किया। उसका यह सवाल सुनकर अर्णव ने उसकी नाराजगी भरी निगाहों में झांकते हुए संजीदगी से जवाब दिया, क्योंकि जैसी भी है वो माँ है तुम्हारी और यहाँ तुम्हारी शादी की रस्में हो रही हैं, तो तुम्हारी तरफ से कोई तो होना चाहिए। अब तुम्हारे पापा को तो मैं नहीं ला सकता, पर तुम्हारी इस नई जिंदगी की शुरुआत तुम्हारी माँ के आशीर्वाद के साथ तो करवा सकता हूँ। बहुत बड़ा एहसान किया आपने मुझ पर अब दोबारा कभी ऐसा कोई एहसान मत कीजिएगा मुझ पर, धृति ने बेरुखी से कहा और उसका हाथ छटकते हुए अपनी हथेली को हटा लिया। कुछ ज्यादा ही नाराज थी वो। अर्णव के चेहरे पर बेचारगी के भाव उभर आए। धृति, एक बार फिर उसने धृति को पुकारा ही था कि उसे बोलने का मौका न देते हुए धृति ने उसकी बात काट दी, मेरा मूड पहले ही खराब है, बात मत कीजिए अभी आप मुझसे। जाने गुस्सा था, नाराजगी थी या दर्द, पर धृति इस वक्त काफी डिस्टर्ब लग रही थी। अर्णव ने उसकी ओर खिसकते हुए एक बार फिर उसकी हथेली को अपनी हथेलियों के बीच थाम लिया और प्यार से उसे मनाने लगा, अरे यार तुम तो नाराज हो गई, अच्छा चलो माफ कर दो, अगली बार से तुमसे पूछे बिना कुछ भी नहीं करूंगा, आज हल्दी है यार हमारी, अपना मूड तो स्पॉइल मत करो। यार धृति, ये पल दोबारा नहीं आएंगे, तुम्ही को शादी की हर रस्म को एंजॉय करना था ना, और अब देखो कैसे मुंह लटका कर उदास सी बैठी हो, माफ कर दो ना, नहीं करूंगा दोबारा तुमसे पूछे बिना कुछ भी। देखो उन दोनों को कैसे एक दूसरे को हल्दी लगा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और एक तुम हो कि मुझसे मुंह फुलाए बैठी हो। अर्णव के बहुत मनाने पर धृति का गुस्सा और नाराजगी कुछ कम हुई। उसने कबीर, माधुरी, मृणाल और निहारिका को एक दूसरे को हल्दी लगाते साथ में मुस्कुराकर इन पलों को एंजॉय करते देखा तो दिल में एक चाहत ने जन्म लिया। उसने अपनी गाहें अर्णव की ओर घुमाई, जो मायूस सा चेहरा लिए बड़ी ही उम्मीद से उसे देख रहा था। नाक से कोरता हुए वो हौले से मुस्कुराई और अपनी उंगलियों को हल्दी में डुबोते हुए अर्णव के गालों पर हल्दी लगा दी और लगे हाथ मौके का फायदा उठाकर अर्णव ने भी उसे अपने प्यार के रंग में रंग दिया। दूर खड़ी कोमल जी दोनों को देखते हुए मुस्कुरा उठी, उनकी आंखें भीग गईं और मन ही मन उन्होंने दोनों को सैकड़ों दुआएं दे दी। टू बी कंटिन्यूड, चलो वोट शुरू किया जाए, देखें कितने लोगों को तृतीय आज सही लगती है और कितनों को गलत।